Tesham Tukhak Vimanima Chitakava Vastra. Dekada Sayyuki Vayan Vato Vodhya.
Brahmastati.
Teta Drishti. Chasapai Asakti Vivana. Sarvadayo. Amhidat. Matha Mutasama.
Tesham Tukhak Vimanima Chitakava.
वासियों की जो इंद्रियां हैं उनको हमने प्यारा बना रखा है। और उनकी इंद्रियों के माध्यम से हम मधु अमृताशम मकरंद पान करते हैं। इसका अंगी अंगी माने चरण कमल कुछ अंगी कमल जो है चरण कमल उसके मकरंद को मधु और आशव के समान आशव मान मकरंद के जाते किसके समान हम लोग उसको पान करके हमारा जीवन भी इसलिए हम लोग भी भूई खाते हम लोग भी सौभाग्य मानते कैसे पान करते हैं उसी को आप ये टीका है बनता है ब्रजवासियों का हाथ में वर्णन करना किसी की सेवा चाहे पशु हो कीट हो किसी की अधिक की हम भी उसी ब्रजवासियों के संबंध में प्रमुख होता है। इसलिए ब्रजवासियों का महिमा तो हम वर्णन नहीं कर सकते इसलिए मैंने पीछे से बताया है भवे अत्रवार अमृतत्र कुवास चिरस्यां चिरस्यां माने किसी भी प्राणी के रूप में अभी हमारा जन्म हो जाए उद्भिद अथवा जैसे भी कहीं भी भवे अत्र अत्र मिलता है वा अन्यत्र से बाहर भी भगवत भक्तों का संग मिले निरंतर हरि कथा श्रवण करने का सुयोग भी है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा उनका लोग तो अत्र ही के लिए है वृंदावन के लिए किंतु वृंदावन में क्योंकि चाहे ज्ञान अनजान में वहां पर कृष्ण के चरणों का मनो का लघु पान करने का और जगह में भक्तों के माध्यम से उनके महात्मा के माध्यम से ये सुखा ये सब कठिनाई साधारण नहीं है हम लोग को भी मालूम होता है साधारण सा किंतु इसका बहुत बड़ा भारी फल है बहुत ही प्रभावशाली है। सब दुर्भागा लोग हैं जो उनको सुनने की और करने की इच्छा नहीं है वो लोग दुर्भागा है। एकादश देवता अर्थात ग्यारह इंद्रिया मैंने दस इंद्रियों को पाले दस इंद्रियां हैं चक्षु कर्तकर नाशिका जीवा त्वचा
वाक पान वायु
वाक पान पानी वायु उपस ये दस और एक बुद्धि अहंकार चित्त
तेईस
हो गया ना तेरह ना चौदह इन्होंने ये लिखा है कि एकादश ही तो इसमें कुछ अवकाश है इसको पीछे रोक सकता है दस ग्यारह इंद्रियों के मुद्दे ये दस चार चौदह को बताना तो चौदह
इंद्रियों एकादश इंद्रियों एकादश
एकादश कोई काम एकादश कोई काम नहीं करेगा यदि मन बुद्धि और ये सब ना इनके बिना कुछ भी काम नहीं इसलिए वो जरूरी है। इसमें अहंकार अधिष्ठित रुद्र चंद्रादि देवताओं के सहित हम लोग अपने को अपनी बड़ी प्रशंसा हम करते हैं हमारे खाते की महिमा बहुत अधिक है महाभाग्यवान हम लोग अपने को सुना दे रहे हैं क्योंकि ब्रजवासियों के अहंकार बुद्धि मन चक्षु श्रोत्र वासना नशा बात पानी बात पाई उपस्थित इत्यादि जितनी भी हुई हैं कृष्ण के ये समस्त रसों का पान, जैसे आंख से देखते हैं तो आंख के अधिष्ठात्रा सूर्य है, वायु के अधिष्ठात्री
अश्विनी
कुमार, इसी तरह से
जीवा का वरुण,
वरुण
आपका इंद्र
और
मन के चंद्र,
मन का चंद्रमा,
कौन
अहंकार के रूप इत्यादि ये सब कर। अतः हम लोगों के बद्ध जीवों के इंद्रियों में अभी हाथ है हमारा, इसमें से इंद्र निकल जाए तो हाथ निकल जाए, कान नाक से नाक सुन न सके नाक है, तो इसका मतलब क्या है, वो तो मरी है, ओम देव चले गए, प्राण चला गया। नाक कान में इसका अधिष्ठात्री कौन है, अधिष्ठात्री देवता निकल जाएंगे, कान है क्या तुम सुनाई नहीं,
दिग देवता, दिग देवता, दिशा, दिग देवता,
इसलिए हम लोगों के मरने के समय में तो ये समस्त इंद्रियां रह जाती हैं, इंद्रियां रह जाती हैं, हाथ पैर नाक जाता है, किंतु लिखा है ये इंद्रियों के साथ में मन चला जाता है आत्मा को लेकर, इसलिए उनके अधिष्ठान को देवता चले जाते हैं, उसमें कुछ काम नहीं होता। तो सुन रहे हैं ना या बोल रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, ये सब इसका अधिष्ठान देवता के कारण है, ये है। और ऐसे पुत्र हो गया, अब बोल रहे हैं ना, अब जा रहा है,
काम नहीं कर,
अब ये काम नहीं खत्म, इसलिए अधिष्ठात्री देवता बीच में मध्य में बने में पिछले सब, ये मरा हुआ शरीर है, प्रभु ने इसे संबंध उन लोगों से लगा करके इसको करा रखा है। और सबसे विशेष बात है कि इसमें आत्मा है, आत्मा नहीं रहती तो देवता लोग भी मरेंगे और ये शरीर का कोई काम नहीं। इसलिए कहते हैं कि इसमें वो भी ब्रजवासी आत्मा स्वरूप हैं, अब उनमें से वो आत्मा आस्वादन कर रहा है कृष्ण के चरण कमलों का और यासी अंग दर्शन और श्रवण इत्यादि का उसे जो उल्लास करता है, उनमें देवता लोग माध्यम। हम लोगों के लिए विशेष सबके साथ हो गए, ब्रजवासियों की इंद्रियां यहाँ पर ऐसे कहा गया है, किंतु जो लोग नित्य सिद्ध हो जाते हैं वो देवता लोग वहां पर जा नहीं सकते और उनको जरूरत नहीं, उनका सब इंद्रिय सचिदान वही एक थोड़ा सा सामंजस्य कर रहे हैं, वहां जो देवता है वो देवता की तो वो भगवत स्वरूप है, वो देवता कोई ये देवता सचिदानंद वो है। जैसे वहां पर एक घास भी है किंतु सच्चिदानंद से, ऐसे देवता लोग भी हो सकते हैं किंतु सच्चिदानंद। इसलिए कृष्ण के चरण कमल विषय मकरंद का आस्वादन इंद्रियों के माध्यम से हम करते हैं, इसलिए आस्वादन तो वो करते हैं, हम चषक हैं, प्याले हैं, इसलिए प्याले में भी कुछ रस रह जाता है, इसलिए हम उसका जैसे हम लोग अभी ये सनातन गोस्वामी हरि कथा लिख रहे हैं बोल और हम लोग उसका वर्णन करते, उनको इस चीज का अनुभव, हम लोग को कुछ अनुभव नहीं, क्योंकि चूंकि उसी कथा को हम लोग अपने इंद्रियों में ले करके दिमाग में ले करके और बोलते हैं, तो उससे हम लोग को कुछ लाभ हुआ कि नहीं, कुछ इतना कुछ तो लगता रहे तो रहेगा, इसलिए अब यही करते 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 जितना ही अधिक परिमाण में होता जाएगा, साधन होता जाएगा,
हम लोग उनके निकट चलते आएंगे और वही कृपा करके हमारे हृदय में विशुद्ध सत्य जगा देंगे, तब तो साधन होगा। जड़ जगत के जो साधन है प्याला, उसमें रस रहने पर भी कुछ अटक जाएगा, फिर मार देंगे खत्म हो जाएगा, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं। वहां पर वो मकरंद कैसा है, वो मकरंद परम माधुर्य अमृत और आशय सदृश, आशो सदृश अमृत स्वरूप है और आशो आशो माने मदिरा के समान, जैसे मदिरा लोग पीते हैं, जैसे मधु है, मदिरा करने से ही नाम, आशो करने से परम जीवन स्वरूप है। आशु से आशो, आशु माने प्राण, अशु अशु ये प्राण स्वरूप है, अमृत काल से मृत्यु हुई मुक्तों का भी आशा है, मरते हैं उनके लिए भी आशा है, परम मार्ग गोपी ब्रजवासी लोग नित्य मुक्त हैं, उनके परिकर उनके लिए भी कृष्ण की कथा है, उनका रूप दर्शन करना इत्यादि परम मार्ग, उनको भी मार्ग मतलब ऐसे मधु को पान करने के लिए ब्रजवासियों के प्रत्येक इंद्रियों के अधिष्ठान करने से ही संभव है, इसलिए हम लोग प्रत्येक एक एक उनके अंगों का आश्रय करके एक एक प्रकार की भक्ति का आस्वादन करते, आंख से दर्शन का, कान का आश्रय करके उनकी मधुर कथाओं का, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करें, मन के द्वारा चिंतन करने का, बुद्धि के द्वारा और विशेष रूप से आस्वादन करने का, पैरों के द्वारा उनकी लीला करने का, इसी तरह से प्रत्येक इंद्रियों में से एक एक को हम लोग आश्रय करके दर्शन करते, इसलिए भक्ति में से एक एक प्रकार की भक्ति लाकर के कृतार्थ हुआ करते हैं, और जो लोग समस्त इंद्रियों के द्वारा समस्त वृत्तियों के द्वारा निरंतर भक्ति करते हैं भगवान का, तो उनकी क्या दशा है, हम लोग एक एक भक्ति का और वो सभी भक्ति का श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पान सेवन उनका सौभाग्य कितना हो, इसलिए उनके धर्मों का वर्णन किया जाए। अतएव कहते हैं कि हमसे अधिक श्रेष्ठ कौन है, समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के समस्त रूप गुण लीला इत्यादि का सब समय पान करते हैं मधुर, तो उनका क्यों कैसा होगा, उनका तो वर्णन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ब्रजवासियों का उत्कर्ष है, एकादश इंद्रियों का वर्णन क्यों किया, केवल अवश्य हम लोग दस वो और चार वो चौदह होना चाहिए, किंतु उन्होंने ग्यारह का भी वर्णन किया, ये इसलिए चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव स्वामी तो ये हुए विषय आश्रय नहीं, इसलिए इसको इसमें से निकालते वास्तव आश्रय नहीं, इन्हें को निकाल दिया तो रह गया त्रयोदश, और त्रयोदश में से भी पायु और उत्कर्ष दो को निकाल दो, निचली उंगलियों यदि कहो ये पुरुषों का ये दोनों इंद्रिया भी छोड़ दी गई, किंतु ब्रजवासियों ब्रजवासी तो सब समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं, तो माने पर बिखाते हैं जैसे सनातन गोस्वामी, जो ये दृष्टता सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया, इतना कर लेगा। सुखदेव गोस्वामी ने समझा कि यह दुष्टता हो जाएगी, हम इसे कहने के अधिकारी नहीं, इसलिए इन दोनों को काट। वो परम भक्तों के लिए है क्योंकि एकमात्र गोपियों के लिए अधिकार है, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए एकादश इंद्रियां ही ये
तो नाक के अश्विन कुमार द्वय लिया गया था ना, 12 हो जाएगा
मुझे नहीं, ये
एक और कारण, चरण के अधिष्ठाता विष्णु है पद के अधिष्ठान और चित्त के हैं
वासुदेव,
तो दोनों वे ही तत्व हैं, इसलिए एक त्रयोदशी त्रयोदश में से दो को बाध्य देगा। पहले वासुदेव को बात दिया, फिर उसमें से भी वासुदेव जी और इनको का दो ही तरह में होते हैं, तो इसलिए वो ग्यारह की समस्त इंद्रियां सच्चिदानंद हैं, इसलिए अधिष्ठात्री देवता को वहां पर पहुंचने की कोई संभावना नहीं, वहां नहीं जा सकते क्योंकि समस्त इंद्रियां सच्चिदानंद। तथापि एक बात साधारण रूप में इसमें कहा क्यों गया, इसमें कुछ गूढ़ रहस्य है। हमारे जीव गोस्वामी के और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीकाओं में भक्त गोस्वामी सिंह उज्जवल इंद्रण के और जीव गोस्वामी के अंतिम कृति संदर्भ में एक शब्द है साधारणीकरण। साधारणीकरण माने क्या, साधारणीकरण माने होता है एक औरत रो रही, औरत रो रही, मान लिया कि एक लड़की रो रही है और पिता माता है, वो ससुराल जा रहे हैं और टहक टहक करके रो रही है, तो उसकी मैया क्या करेगी, हंसेगी, हंसती बेटी जाओ करो, बड़े आनंद की बात है, कहे ना कि उसका रो रोना हुआ देख करके वो गिर, इसका नाम है करना नहीं पड़ता अपने आप को क्या
संक्रमित,
इसको कहते हैं साधारणीकरण,
समानाधिकरण से
अधिकरण का आदि मत
कोई
कोई कोई
देखी सब
समान समानीकरण समान की
समानाधिकरण के साधारणीकरण
समानाधिकरण और साधारणीकरण एक ही चीज कहते हैं, जब दूसरे के हृदय के समान अपना भी हृदय बना करके भाव के समान अपना भाव बना देगा तो उसका भाव कुछ संक्रमित, इसको भक्ति में इसका बड़ा बड़ा महत्व है, जो ऐसा कर सकेगा इसी का नाम है अनुगत्य। अनुगत्य मैंने कहा
इसी को
तदात्म्य भी कहते हैं, इसी को आवेश भी कहते हैं, आवेश के साथ में करने ये सामान्य कर्म है, जो जितना ये कर सकेगा रागानुगा भक्ति वही भक्ति में कोई नहीं, किंतु रागानुगा भक्ति में इसकी
आवश्यकता। परिभाषा एक बार फिर से
जब किसी के भाव में भाव के समान अपना भाव बनाकर भाव बना दिया तो उसके भाव हमारे अंदर में संक्रमित हो गए, उसका भाव और हमारा भाव समान भाव से एक समान, अपने भाव को उसके भाव में मिला दिया, उसके समान कर, तो इसको कहते हैं समानीकरण, समानाधिकरण, तदात्म आवेश। अतः रूप गोस्वामी है, कोई रूप गोस्वामी के भजन को देख करके उसमें लालसा हुई कि हम वैसा ही भजन करें, तो रूप गोस्वामी का मूड जानना पड़ेगा, उनका भाव जानना पड़ेगा कि इस रूप में वो भजन कर, दो रूप में भजन करते, साधक और सिद्ध रूप। साधक रूप में दिन रात सोना पीना सब बंद, आलस्य बंद, दिन रात उन्हीं के कथाओं के चिंतन में मनन में लगा, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और कभी कुछ नहीं, चुपचाप ऐसे पड़े शरीर का होश। उस समय क्या समझो, शरीरों की चिंताओं में वो प्रवेश करके अपने नित्य सिद्ध देह में रूप मंजरी जैसा काम करता है, तांबुलार्पण का आदमर्दन प्रयोगा इत्यादि कार्यों में एकदम व्यस्त रहे, उनको शरीर का होश नहीं, कुछ नहीं, नित्य अपने सिद्ध शरीर से सेवा करो, वह है समानीकरण। अब यदि उन्हीं भावों को जान करके वैसा ही कोई अपना भाव बना ले और वैसा ही करने लग जाए, तो दोनों का भाव एक होकर के, और जो रूप गोस्वामी जो आस्वादन कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, करते 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 कुछ दिनों के बाद उसके सारे भाव इधर में आ जाएंगे और वो सिद्ध होकर के वैसा ही स्वरूप आकर के प्रमाण कर सकते। इसलिए समानीकरण बहुत आवश्यक, इसीलिए पहले कहा गया स्मरण, ध्यान, ध्यान, ध्वनुस्मृति और एक
समाधि,
तब समाधि में भी अब दो प्रकार सविकल्प, इस तरह से भजन हम लोग विषयों के संपर्क में अपने चित्त को इतना अधिक रखेंगे ना, उतना ही हम विषयों में रहेंगे। हम अपने मन से या साक्षात रूप में इंद्रियों के संपर्क से हम विषय के संपर्क में जितना अधिक रहेंगे, हम उसमें अविष्ट बात और विक्षेप आए वो सब चिंता, ये विक्षेप का है। विषयों का जितना अपने मन से शरीर से संग करेंगे, जैसे आंख से हम रूप देख रहे हैं, भजन करने के समय में जो अभी हम देख रहे हैं वही सब चीज आएगा और उसमें विक्षेप करेंगे। कान से जो कथाएं हम विषय की सुन रहे हैं, आंख से जो हम देख रहे हैं, जीवा से जो खा रहे हैं, अंगों के स्पर्श जिससे चीज हो रही है, इन समस्त इंद्रियों का संपर्क होने से विषय में जब हम चित्त को स्थिर करने बैठने जाएंगे तो वो सब चीजें अपने आप आएंगे। इसलिए जो भक्त लोग साधक लोग 24 घंटा सब समय अपने एकादश इंद्रियों को द्वारा जिनका जो संपर्क है वो सब चीज में भगवान की लीला कथा रूप दर्शन और उन्हीं में लगा, तो वो तो जल्दी से अब उसमें आविष्ट होकर के उनका समानाधिकरण हो जाएगा और उधर मिलते सिद्ध हो गया। और जिनको विषयों का संपर्क जब तक है तब तक लाख कोटि जन्म केवल गुरु कृपा वैष्णव कृपा मौत से नहीं होगा। गुरु कृपा तो ये सब करके संपर्क कराने की चेष्टा करें, और तुम लोग या हम लोग यदि करें ही नहीं तो इसमें दोष किसका, इसमें गुरु का दोष नहीं, वैष्णव का दोष नहीं, शास्त्र का दोष, ये अपना हमारा दोष। इसलिए ऐसा साधन करना पड़ेगा, जितना वो संपर्क दूर होता जाए और ये संपर्क बढ़ता जाए तब तो भाई होगा। इसलिए हमारे अब देखो मुक्त जो कहानी हम लोग कहते हैं हमारे रामचंद्र कविराज और शिवास श्रीनिवासाचार्य या रूप गोस्वामी के भी कितने हैं इसके साथ, या समस्त रूप गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी राधाकुंड में बैठे ऐसे मालूम हो राज्य ऐसे बैठे हुए कि तो बैठे नहीं, सहज समाधि उनकी लगी हुई है, लीला चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण कहीं गौरी कुंड में है और कोई गोपी रूपमंजरी गई उनको लेने के लिए, और इतने में देखा कोई सखी स्थली से आ गया हाथ में मट्ठा लेकर के, और उनका किनको आवेश था वहां, अब ये स्थूल रूप में उनके इंद्रियों के सामने गया, बोला जैसे ये मट्ठा लीजिए, कहा जब पड़ा तो ना कहां से लाया, उन्होंने कहा कि सखी स्थली से, बस उनके पास में जो लठिया थी लेकर के दौड़े लाने के लिए और वो भागा, फिर कहा अच्छा हुआ ये सखी को मैंने खदेड़ दिया, वो उतना आविष्ट है, कोई आने पर भी उनको ये नहीं मालूम हुआ कि कोई दूसरा कोई आया कहां से आया ये सब, और उसके बाद में फिर लीला में मस्त हो गए। ये है समानार्थ। ऐसे ही साधक जो रागानुगा है, रागानुगा वाला क्यों, वैधि भक्ति वाला नहीं, इसलिए कि अनुगा अनुगा मुझे रोषा धार्मिकरण करने जा रहा है, ब्रह्मा जी उसी का ज्ञान पहले समानीकरण करने की चेष्टा कर रहे हैं कि मैं गोपियों के इंद्रियों में अपना समानीकरण करूं, या ब्रज के गोपों का, या ब्रजवासियों का, या वहां के तीन लता गुल्म किसी का, गोपियों के लिए तो उन्होंने कहा दिया उसको, बाकी लोगों के लिए बहन के लिए, या अपने मन बुद्धि को सब ऐसा लगा करके उनके स्मरण कर दे जिससे कि इनके माध्यम से हम आशा रखें, अन्यथा स्वादन नहीं। अभी हम लोग भी कुछ भी रसा स्वादन कर रहे हैं, अभी इनके शब्दों को लेकर के कर रहे हैं, इनके वर्डों को हम लोगों ने अपने दिमाग में लिए और देख करके सनातन गोस्वामी कैसा देख रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कैसा ये समझ रहे हैं, अब समानीकरण करके इसको हम करने की यदि यही एकदम हमारा चित्त उसमें लग जाए, ऐसे ही भजन में मन लग जाए, इसको कहते हैं भजन, जो जितना ये कर सकेगा उसका उतना उत्तम से विकार आज, जिसका ऐसा नहीं हो करके संसारिक वस्तुओं के लेन देन करने धरने और उसी में सब समय इंद्रियां लगी हुई है, चित्त वहां पर एक मिनट के लिए कभी सुनते हैं बस जाता है, इसके बाद में इस संसार में रह जाता है, बस खत्म। इसलिए जब ऐसा होगा ना तो ये कब होगा, हरी कथा परिपूर्ण रूप से गुरु वैष्णव के मुख से, जो इसमें ऐसे हैं परिपक्व उनके मुख से सुनेंगे और सुन करके अपने चित्त को वैसा लोभ होगा, लोभ होने के बाद ऐसा करने लग जाए साधन भजन दिन रात इंद्रियां सब ये सब मन फल जितना है सब दूर हो जाएगा। इसी को हमारे ब्रह्मा जी ने यहाँ पर मांगा है, किसे मांगा, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं हमारा भी ऐसा ही हो, इसलिए मांग रहे हैं। यद्यपि उनको वहां पर जड़ी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता इत्यादि नहीं है, उनके इंद्रियां भी वैसे नहीं है जड़ी, सभी छीन में है, तो भी ऐसा होना मतलब पूरी भारत जमी हो जन दिगंधकार नहीं ले चला, 5 बजे से 6 बजे
आज 5 तक पूजी से आ रही
है।